ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் புஷ்பதன்ஸ் சிவ மஹிம ஸ்தோத்ரா இன் ஹிந்தி, ப்ரெசன்டட் பை சுவாமி நிஷ்தானந்தஜி சரஸ்வதி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
ரிச்சம் வாசம் பிரபித்தி மனோயஜு பிரபித்தி ஷாமி பிராணம் பிரபித்தி சக்ஷு ஸ்ரோத்ரம் பிரபித்தி வாவோஜ சஹௌஜோ மயி ப்ராண பானோ ஜன்மே சித்ரம் சக்ஷுஷோ ஹ்ருதயஸ்ய மனிஷோ வாதித்ரிணம் ப்ரிஹஸ் பதிரமே ததாது சன்னோ பவது புவனஸ்யஸ்பதி சன்னோ பவது புவனஸ்யஸ்பதி. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. கல் சே விசார் ஹம் லோக வேதாந்த பரிபாஷா கோபர் கர் ரஹே. வேதாந்த கி வியாஜ் சே தர்ஷன் கி சமீட்சா சல் ரஹி தி. கியுங்கி வேதாந்த தர்ஷன் கோட்டி மே ஹை, இஸ்லியே இஸ்கே பூர்வ சாரே தர்ஷனோ கி சன்ஸ்கார் பஹுத் ஜரூரி ஹை. द्वादश दर्शन स्वीकृत है. प्रथम दर्शन चार्वाक दर्शन, द्वितीय जैन दर्शन आता है, तीसरे नंबर पर है शौत वैभाषिक, चौथे नंबर पर शौत्रांतिक, पांचवें पर योगाचार और छठवां है माध्यमिक. ये छह दर्शन नास्तिक का कोटि में माने जाते हैं. और आगे जो षड दर्शन है जिनको आस्तिक कहते हैं, आस्तिक नास्तिक का विवेचन इतने मात्र से है कि जो वेद के प्रामाण्य को स्वीकार करते हैं उनको तो कह दिया आस्तिक, जो वेद के प्रामाण्य को नकारते हैं अपनी मति बुद्धि युक्ति तर्क वितर्क से ही बात को समझते समझाने का प्रयास करते उन्हें नास्तिक कोटि में रखा है. वैसे पाणिनीय सूत्र के आधार पर एक सूत्र है अस्ति दिष्टम मतिज, इसका तात्पर्य है अस्ति पर लोके मति यस्य स आस्तिक, जिसकी परलोक में मति मतलब बुद्धि है निश्चय करता है वह आस्तिक. ऐसा आस्तिक नास्तिक शब्द का निर्वचन पाणिनीय व्याकरण से होता है. पर ये आस्तिक नास्तिक की परिभाषा पूरा पूरा इस सब जगह घट नहीं पाता है, क्योंकि ऐसा माने तो कुछ परलोक की सत्ता आस्तिक में भी नहीं मानते. इसलिए अंत में कहना पड़ता है कि वेद प्रामाण्य को स्वीकारने वाले आस्तिक, नहीं स्वीकारने वाले नास्तिक. आस्तिक कोटि में सर्वप्रथम न्याय वैशेषिक ये दो दर्शन आए, इसके बाद सांख्य और योग, इसके बाद पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा. पूर्व मीमांसा जिसको हम कहते अध्वर मीमांसक, उत्तर मीमांसा को वेदांत कहते। अध्वर शब्द का अर्थ है यज्ञ, और इसके जो वेदांत परिभाषा के निर्माणकर्ता इनका नाम भी क्या है, धर्म राजा ध्वरिंद्राचार्य। अध्वर मतलब यज्ञ, तो ये कुल मिला के छह षड आस्तिक दर्शन हो गए। इनके कर्ता कौन है ये भी आपको वैसे प्रायः तो मालूम ही होगा। चार्वाक दर्शन के कर्ता के विषय में ये प्रसिद्धि है, किंवदंती है कि बृहस्पति जो देवताओं के गुरु है वे ही चार्वाक दर्शन के वक्ता है। अब बृहस्पति ने ऐसा दर्शन क्यों चलाया, मन में इस कुतूहल शंका होगी, देवताओं के गुरु बृहस्पति। कहते हैं कि जब शुक्राचार्य से असुरों से कुछ अनबन हो गई, मतभेद होने के बाद शुक्राचार्य जी तपस्या के लिए चले गए, छिप गए असुरों से बिल्कुल दूर, उस समय बृहस्पति जी ने शुक्राचार्य जी का रूप धारण करके, मतलब केतु बृहस्पति जिसको आप डुप्लीकेट कहते हैं ना, शुक्राचार्य का रूप धारण करके छद्म रूप से शुक्राचार्य का रूप लेकर असुरों को यह विद्या उपदेश किया, वही चार्वाक दर्शन। फिर आसुरी शक्ति जब पराजित हो गई, अब गुरु के पास आए तो गुरु तो है ही नहीं, वो तो अंतर्धान, वो तो बृहस्पति थे, शुक्र थे नहीं। चारों तरफ खोजा तो मालूम पड़ा शुक्राचार्य तो तपस्या कर रहे। कहा गुरु जी आपने जो उपदेश दिया उससे हम लोग तो पराजित हो गए, मारे गए, देवता लोग जीत गए। शुक्राचार्य ने कहा मैं कहां कुछ उपदेश दिया, अरे तुम लोगों ने मेरा तिरस्कार किया, उपहास किया, मैं तब से एकांत में बैठकर भजन कर रहा, तपस्या कर रहा। कहा जाने दो शिष्यों को, जब उनको हमारी जरूरत नहीं तो मैं क्यों उनके पास जाऊं, मैं तो कभी गया नहीं, उपदेश किया नहीं तुम लोगों को। अब हुआ कि भाई तब किसने उपदेश दिया, तो मालूम पड़ा कि बृहस्पति जी शुक्राचार्य का रूप धारण करके जो उपदेश दिए वही चार्वाक दर्शन कहलाता है, जिसका मूल तो आप जानते ही हैं। इनके यहां थोड़ा पदार्थों का भी चिंतन कर लीजिए। चार्वाक दर्शन में केवल चार ही भूत हैं, पांच भूत नहीं मानते, पृथ्वी जल तेज वायु चार भूत मानते हैं, आकाश को भूत नहीं मानते, पदार्थ नहीं मानते। इन चारों को लेकर उनका विचार चलता है और आत्मा के स्वरूप के विषय में इनका कहना है कि जिस प्रकार से ये एक आधुनिक दृष्टांत दें, तो कोई गाड़ी है, उस गाड़ी में इंजन में पेट्रोल डाल दिया, तो पेट्रोल डालते ही गाड़ी में चेतना आ गई, गाड़ी आगे चलने लग गई। इंजन के साथ जब तक पेट्रोल डीजल का संबंध नहीं तब तक गाड़ी चल नहीं सकती। ऐसी चार भूतों के एक विशेष सम्मिश्रण का नाम है चैतन्य, वही आत्मा है। पुराना दृष्टांत वो शराब का देते हैं कि शराब जैसे कि ये जो है इन्हीं पदार्थों से तैयार होता है, और उसमें जैसी मादकता है, ऐसे चार भूतों के विशेष सम्मिश्रण से जो चेतना आती है वही चैतन्य, वही आत्मा है जो शरीर तक ही सीमित है। शरीर पाद के बाद मोक्ष हो जाता है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं। इसलिए शरीर को बढ़िया स्वस्थ रखो, जैसे भी रखना पड़े, ज्यादा भूत भविष्य का चिंतन नहीं करना, इतना कम बात नहीं है। आदमी कई भूत में परेशान, कई भविष्य की चिंता में परेशान रहता है, पर ये कहता है कि बस वर्तमान में रहो। तो शरीर ही नहीं क्या आत्मा है, शरीर पाथ ही मोक्ष है, चार भूत ही पदार्थ है, ये तीन बात याद रखना, आगे इसका खंडन मंडन आता रहेगा। और केवल प्रत्यक्ष इनके यहां प्रमाण है, इनके यहां केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, वेदांत के यहां तो षड प्रमाण है, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति अनुपलब्धि, छह प्रमाण वेदांती मानते। पर ये चारवाक केवल प्रत्यक्ष प्रमाण मानता है, शरीर को आत्मा मानता है, शरीर पात को मोक्ष मानता, और चार भूतीन के यहां तत्व पदार्थ है। चारवाक दर्शन के तर्क बहुत ही प्रसिद्ध है, ये ग्रंथ है तत्व पप्लव सिंह, उसमें इतने गजब गजब के तर्क है, आप पढ़ेंगे तो हैरान हो जाएंगे। सामान्य तर्क नहीं, बहुत ही प्रकृष्ट तर्क है। जनश्रुति है कि उसी तत्वप्लव सिंह के तर्कों को लेकर के खंडन का श्रीहर्ष महाकवि ने द्वैतवादियों का बहुत कुछ खंडन किया। अस्तु कुछ भी हो, चारवाक के बाद अब आगे बढ़ते हैं जैन दर्शन। इसका विशेषकर ये भी मीमांसा वेदांत न्याय वैशेषिक आदि की तरह से परमाणु से सृष्टि को मानते हैं। जैसे न्याय कहता है कि परमाणु में स्पंदन हुआ, एक परमाणु दूसरे से जुड़ते हैं, द्वैणुक्त श्रेणुक चतुर्णुक इस क्रम से सृष्टि बनती है, ऐसे जैन दर्शन की मान्यता है कि परमाणुओं की पुंज से ही ये भूतों का निर्माण होता है। इनके यहां भी बड़ा गंभीर चिंतन आत्मा का है। इनके यहां मोक्ष के विषय में एक दृष्टांत देते हैं, जिस प्रकार से कोई सूखी तुमड़ा हो लौकी, सूखी लौकी के ऊपर आप मिट्टी का लेप कर दें, जल में डाल दे, वह लौकी नीचे चली जाती है। जैसे ही वह मिट्टी धीरे धीरे घूल करके वह लौकी से अलग हो जाती है, अब वह जो सूखी लौकी ऊपर आती है, तो सात तेन ऊर्ध्व गमनम मोक्ष है, जिसको कहते लोकालोक आकाश। तो सातत तीन मतलब निरंतर ऊर्ध्वगमन ही जैन दर्शन का मोक्ष है। और ये जो मल है, ये आणवादी बहुत सारे मल है, ये मल जो जैन दर्शन प्रयुक्त साधनाएं हैं, तप्त शिला पर आरोहण है, केश लुंचन, ये बहुत साधनाएं, उपवास है, व्रत है, उसके द्वारा जब मल नष्ट होता है तब जीवात्मा पवित्र होकर सातत्तीन ऊर्ध्वगमन करता है, ये इनका मोक्ष है। इनका विशेष प्रसिद्ध है सप्त भृंगी नय। सप्त भृंगी नय जरा विचार कर ले, कल संक्षेप से हम लोगों ने सुना था। पहला है अस्ति च, किसी ने पूछा आत्मा है पदार्थ है, कहेंगे अस्ति च है, फिर कहेंगे नास्ति च, दूसरे दृष्टि से विचार करे तो नहीं भी, ये वस्तु दिखाई दे रहे तो बिल्कुल है, परंतु कुछ काल के बाद नष्ट होने वाली है तो कहेंगे नहीं भी है, फिर कहते अस्ति च नास्ति च, स्वरूपतः न होने पर भी प्रातीतिक रूप से है, इसलिए अस्ति च नास्ति च। टीवी के स्क्रीन पर वस्तु प्रतीति मात्र से है, उपलब्धि न होने से नहीं है। आप टीवी के स्क्रीन पर सारा नजारा देखते हैं, बहुत सुंदर लगता है, तो वह है भी नहीं भी है, प्रतीत हो रहा इसलिए अस्ति च है, उपलब्धि नहीं हो रही मतलब नास्ति च नहीं है, ये तीसरी कोटि है। चौथा कोटि है अस्ति च अवक्तव्यम, है परंतु कह नहीं सकते हैं। पांचवा है अस्ति च वक्तव्यम, है और कह भी सकते। अस्ति च वक्तव्यम च अवक्तव्यम च छठवीं कोटि है। और सातवीं कोटि वेदांत की तरह अनिर्वचनीय रूप से है, अस्ति च नास्ति च वक्तव्यम अवक्तव्यम। इस सप्त भृंगी नये के द्वारा हर चीज को परखते हैं, जानते हैं, जो बहुत प्रसिद्ध इनका सप्त भृंगी नये है। अब आगे बढ़ते बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन में वेदांत में पहले देख लीजिए अंतर क्या है। जहां वेदांत दर्शन मानता है कि बिना अधिष्ठान के भ्रम नहीं होता है, ये कहते बिना अधिष्ठान के भ्रम हो जाता है, ये अंतर है। निराधिष्ठान भ्रम सनुत्पत्ति, ये बात वेदांत परिभाषा में आएगी बार बार। बिना अधिष्ठान के भ्रम नहीं होता, जब तक रस्सी नहीं तब तक सांप की भ्रांति नहीं होगी। ऐसे अधिष्ठान जो ब्रह्म है, ब्रह्म सत्ता पर ही भ्रम हो रहा, तो साधिष्ठान भ्रम तो वेदांत मानते, ये निधिष्ठान भ्रम मानते। दूसरा अंतर यह है कि ये लोग यह मानते हैं कि शून्य आत्मा है, वेदांत चैतन्य रूप आत्मा मानता है। ये दो मान्यताएं न हो तो देखा जाए तो मौलिक रूप से वेदांत बौद्ध में आप अंतर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे भी जगत को सांवृत्तिक आविद्यक मानते, वेदांति भी आविद्यक मानते। सांवृत्ति बोलता विद्या को, उनके दर्शन का एक सांवृत्तिक शब्द है, ये जगत सांवृत्तिक है, वेदांति भी आविद्यक ही मानता। तो बौद्ध दर्शन के चार पार्ट है। प्रथम है वैभाषिक, दूसरा है सौत्रांतिक, तीसरा है योगाचार, पांचवा है माध्यमिक, चौथा है माध्यमिक, चार हो गए ना। वैभाषिक सबसे स्थूल दर्शन इनके यहां। वैभाषिक कहता है कि ये जगत भी प्रत्यक्ष रूप से भाषित हो रहा, बाहर भीतर दोनों के सत्ता को वैभाषिक ये दार्शनिक मानते हैं। और जो सौत्रांतिक है, ये खासकर गौतम बुद्ध के जो सूत्र है लंका अवतार सूत्र, उसको मानकर चलने से दूसरे को सौत्रांतिक कहते हैं। पर यह भी शून्य आत्मा मानता है, शून्य जगत मानता है, सर्वम दुखम दुखम सर्वम क्षणिकम क्षणिकम मानता। जो चार इनके वहां वाक्य हैं, सर्वम दुखम दुखम सर्वम क्षणिकम क्षणिकम सर्वम स्वलक्षणम स्वलक्षणम सर्वम शून्यम शून्यम, ये चार बातों को ये चारों ही मानते हैं। जैसे अपने यहां चार महावाक्य है ना, ऐसे चार इनके यहां महावाक्य के समान है। ये प्रपंच कहती है बस दुख ही दुख है, ये तो सुख बुद्धि होने से हमें दुख की प्रतीति नहीं। जिस प्रकार ये कड़वा कड़वा जो सिगरेट की का धुआं है, ये शराब है, सड़ा हुआ जल कितना कड़वा है, इसमें भी धीरे धीरे स्वाद को विकसित कर लेती, तो शराब कितनी अच्छी लगती पीने वाले को। ये जो धुआं है ना, कड़वी धुआं, ये धुआं भी सिगरेट की बहुत अच्छी लगती पीने वाले को, बिना पिए रह नहीं सकता। जिसने कभी नहीं पिया उसके लिए बहुत कड़वी धुआं है धुआं, पर धीरे धीरे स्वाद को विकसित कर लेने से मजा आनंद आता। ऐसे ही सर्वम जगत दुखम दुखम दुख ही दुख है। अज्ञानी जीव ने इसमें अपने मन बुद्धि से अज्ञान से सुख को विकसित कर लिया, सुख की मान्यता बना लिया। सुबह से लेकर सोने तक इस शरीर की चाकरी करनी पड़ती है कि नहीं, क्या इसमें शोक है। उठो, इसको मंदन ब्रश कराओ, स्नान कराओ, चाय नाश्ता कराओ, फिर कहता थोड़ा आराम कराओ, भोजन कराओ, फिर सुलाओ, फिर घुमाओ। इसका एक के बाद एक डिमांड बना रहता है, इसकी मांग कभी पूरी होती नहीं। इसलिए बौद्ध दर्शन कहता सर्वम दुखम दुखम। दूसरा वाक्य है सर्वम स्वलक्षणम स्वलक्षणम। प्रत्येक पदार्थ का अपना एक लक्षण है, स्वभाव है। जैसे घट है, उसमें पदार्थ, उसमें द्रव्य रखे जाते हैं। जल, जल का स्वभाव शीतलता, अग्नि का स्वभाव जलाना है। तो प्रत्येक पदार्थ एक अपना स्वभाव है, स्वलक्षण है। तीसरा है सर्वम क्षणिकम क्षणिकम। क्षणिकम मतलब सारे पदार्थ क्षण ध्वंसी है, क्षण भर में परिवर्तित हो रहे। दृष्टांत देते हैं गंगा का या दवाई का। जब आप गंगा जी में खड़े होकर संकल्प पढ़ते हैं, गंगा का स्नान कई तरह होता है। एक देव स्नान है, दूसरा मनुष्य स्नान है, तीसरा पशु स्नान है। पशु स्नान होता है गर्मी के दिनों में। बस गए कि मंत्र नहीं, संकल्प नहीं, विचार नहीं, बस ठंडा जल है, पशु की तरह से गर्मी शांत करने के लिए कूद पड़े, उसको कहते पशु स्नान। मनुष्य स्नान है कि मनुष्य उचित कामना की पूर्ति के लिए संकल्प करके, है ना, अमुक वत्सर, अमुक दीन, अमुक नामा हम, अमुक कामना की पूर्ति के लिए गंगा स्नानम करिष्य, संकल्प करके जल छोक स्नान करती है, तो मनुष्य स्नान है। तीसरा है जो उत्तम कोटि का देव स्नान। सारे संकल्प विकल्प शून्य मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से ये साक्षात मां है, पाप ताप को दूर करके हमें तत्व बोध कराए, इस भावना से करे वह है देव स्नान, देवत्व का आधान। देव स्नान होता है चार से छह तक। मनुष्य स्नान है छह से आठ, और आठ के बाद जो स्नान है ना वो पशु स्नान। तो देखो जिस प्रकार से गंगा जी में खड़े होकर आप संकल्प पढ़ते ना, संकल्प पढ़ के छोड़ने तक गंगा की कई धारा निकल गई। पर क्या कहते, सेयम गंगा, यही गंगा है, वो गंगा नहीं। क्षण भर में हजारों गंगा जी की धारा निकल गई, फिर भी क्या कहते, वही गंगा। ऐसे ये पूरा संसार क्षण क्षण भर में बदल रहा। क्षण का प्रत्यक्ष न होने से हम लोग कहते हैं स्थिर है। तो सर्वम क्षणिकम क्षणिकम ये उनका कथन है। अंतिम है सर्वम शून्यम शून्यम। ये पूरा संसार शून्य रूप है। दृष्टांत देखते हैं जिस प्रकार एक केला है, केला के स्तंभ को जब आप छीलते हैं तो कुछ नहीं, शून्य रूप होता। तो बौद्ध दर्शन की जो यह मान्यता है सर्वम दुखम दुखम, सर्वम स्वलक्षणम स्वलक्षणम, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, सर्वम शून्यम शून्यम। बौद्ध में जो योगाचार है, जो क्षणिकत्व को मान के चलता है, योगाचार वेदांत के करीब है। योगाचार सांख्य आगम वेदांत चार, ध्यान रखना। योगाचार जो बौद्ध का, सांख्य आगम वेदांत, ये चारों आत्मा को स्वयं प्रकाश मानने वाले हैं, स्वयं ज्योति रूप मानने वाले हैं। पर अंतर यह है कि योगाचार उस स्वयं प्रकाश आत्मा को क्षणिक मान लेता है, बस इतना ही भेद पड़ जाता है वेदांत से। जो योगाचार है आत्मा की सत्ता को स्वयं प्रकाश तो मानता, पर क्षणिक मान ले तब वह भी क्षण क्षण में परिवर्तित हो रहा। जब क्षण क्षण में परिवर्तित हो रहा तो एक शंका होगी कि फिर स्मृति कैसे बनेगी। जिस प्रकार आप आज यहां बैठकर स्मरण करते हैं कि कल हमने स्वामी प्रेमपुरी आश्रम में प्रातः काल यह बात सुनी थी, कल आज यह सुन रहा हूं, तो कल का स्मरण करने वाला आज तो रहा नहीं, क्षण क्षण में बदल गया। जो कल आत्मा थी, 24 घंटा पहले जो 8 बजे जो आत्मा सुनी, वो स्वयं ज्योति आत्मा तो बदल गई, दूसरी आत्मा क्षण क्षण में बदल गई। तो फिर स्मृति नहीं होनी चाहिए, स्मृति के लिए एक स्थायी वस्तु चाहिए ना, जिस पर संस्कार रहे। तो उत्तर देते हैं योगाचार वाले कि देखो भाई, वो नष्ट हो गया क्षण भर में, पर अपने संस्कार को दूसरे को दे देता है। जैसे समुद्र के किनारे खड़े होकर आप देखते हैं कि एक मध्य में लहर उठती है, वह लहर दूसरे को, दूसरा तीसरे को, इस तरह से अंतिम लहर किनारे पहुंच जाती है। हालांकि लहर नष्ट होने के पूर्व दूसरे को दे देती अपना पावर। ऐसी क्षणिक आत्मा भले ही नष्ट होता रहे, पर वह अपना जो संस्कार दूसरे को देता हुआ नष्ट होता, इसीलिए कोई दोष नहीं। पर इसका भी आगे खंडन मंडन चलता रहेगा, ये तो आपको संक्षेप से हमने बताया। अब आगे बढ़ते हैं आस्तिक दर्शन की तरफ, जो न्याय दर्शन है और वैशेषिक, दोनों समानांतर दर्शन है। समानांतर मतलब कि दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, अंतर इतना ही है कि वैशेषिक एक विशेष पदार्थ को लेकर चलता है, इसलिए इसको वैशेषिक कहते। और न्याय दर्शन में विशेष का इतना महत्व नहीं है, वो दूसरे मंत्र भूत कर लेता है। इनके यहां भी जो पदार्थ है, ये खासकर न्याय वैशेषिक को हम लोग पदार्थवादी कहते हैं, ये दर्शन है मेटरवादी पदार्थवादी। इन्होंने भावाभाव पदार्थ पर बड़ा गंभीरता से विचार किया है, भाव और अभाव। भाव का मतलब होता है कि ये जो भावभूत पृथ्वी आदि जो देख रहे हैं, ये कैसे बना और कब तक इनकी सत्ता रहती, कैसे विलय होता है। ये परमाणु से ही सृष्टि का विस्तार मानते, ये भी पंचभूतों को स्वीकार करते। इनके यहां जो जीव है, वो जीव का ईश्वर से एकता कभी नहीं होता। ईश्वर अनंत अचिंत्य शक्तिवान है, नित्य ज्ञानवान ईश्वर इनके यहां है। न्याय वैशेषिक में अनित्य ज्ञानवान आत्मा है। हम लोग आत्मा का लक्षण क्या करते, ज्ञान स्वरूप आत्मा, ये बोलते ना, ज्ञान स्वरूप नित्य आत्मा है। और ये लक्षण करते अनित्य ज्ञानवान ज्ञानाधिकरणम आत्मा,